मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। दोस्तों, कल मैंने वर्षा ऋतु को महसूस करने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट की थी। पता नहीं मेरी बात आपको कैसी लगी होगी, क्योंकि कभी कभी इस तरह की बातें करने में थोड़ा सा डर सा भी लगता है, संकोच भी होता है कि हम ये सर क्या बता रहे हैं, हम तो पहले से ये कर रहे हैं, और जो महानगरों में रह रहे हैं वो कहेंगे कि सर को थोड़ी पता है कि यहाँ उसे महसूस करना कितना मुश्किल है, और महसूस करके हम करेंगे क्या। तो इसीलिए थोड़ा सा डर भी लगता है और संकोच भी लगता है, लेकिन फिर ये भी लगता है कि हमें अपनी बात तो कही देनी चाहिए। कोई मजबूर तो आपको कर नहीं रहे हैं, कोई ऑर्डर तो है नहीं, आपको ठीक लगे तो कर लीजिए, ठीक ना लगे तो छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, आज भी मैं इसी विषय पर आपसे बात करने की अनुमति चाह रहा हूं। विषय यही है लेकिन थोड़ा सा हटकर, और हटकर यह है कि ये जो वर्षा ऋतु जो चारों तरफ दिखाई दे रही है, इसमें हमें क्या सच में कुछ दायित्व निभाने चाहिए, कुछ अलग तरह के काम करने चाहिए जो हमारे भी हित में हो, दूसरों के हित में भी हो? क्या कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव काम हो सकते हैं? मुझे लगता है कि हाँ, हो सकते हैं। मैं खेती बाड़ी करने की बात नहीं कर रहा हूं, देखिए वो तो व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, किसान बिल्कुल खेती करेंगे ही करेंगे, जिनका भी जो काम है बरसात में वह करेगा ही करेगा। लेकिन यहां मैं बात उनकी कर रहा हूं जिनका यह काम नहीं है, इसके बाद भी वे इसे करने के लिए आगे आए, और बहुत बड़े रूप में नहीं, छोटे से ही रूप में। और सच पूछिए तो ये जो छोटा सा रूप भी है ना, ये किसी समाज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बहुत ही स्वार्थी किस्म का व्यक्ति हूं, मैं तो अपने ही स्वार्थ की बात कर रहा हूं। यानी कि आप जो काम करेंगे वो अपने ही स्वार्थ के लिए करेंगे, और स्व के अर्थ के लिए काम करना कोई गलत बात तो नहीं है। तो हम स्व के अर्थ को सिद्ध कैसे करें, उसे कैसे सही अर्थों में बताएं लोगों को, या खुद भी उसे सही अर्थों में समझें? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा भी अर्थ क्या है, या यूं कह लीजिए कि हमारा स्वार्थ किन चीजों से सिद्ध होता है, शायद हम इसे व्यापक रूप में देख ही नहीं पा रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम पैसा कमा रहे हैं तो हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, लेकिन नहीं मित्र, अगर हम व्यापक रूप में देखते हैं तो जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, या यूं कह लीजिए कि प्रकृति के लिए कुछ करते हैं, तो इनफैक्ट उस करने में हमारा अपना ही हो रहा होता है। इसे ही मैंने कहा है कि स्वार्थ, यूं कह लीजिए एक प्यारा सा भला सा स्वार्थ। तो दोस्तों, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वर्षा ऋतु में, जबकि अभी पानी गिर रहा है, हम कुछ पेड़ पौधे लगाने के बारे में सोचें? मैं पौधों की बात कर रहा हूं तो गमलों की बात नहीं कर रहा हूं। गमलों में तो आप लगा ही रहे होंगे, उनका जीवन बहुत थोड़ा सा होता है, सीजनल होते हैं, ठंड के दिनों में आप दूसरे पौधे लगा देंगे, गर्मी में वो फिर सूख जाएंगे, और ये क्रम चलता रहेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है, इससे मैं मना ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि हम कुछ पौधे रोपें, पौधे ना सही तो पौधा ही रोपें, अभी तो पौधा ही होगा लेकिन वो आगे चलकर के वृक्ष बने, आगे चलकर वो वृक्ष बने, और वृक्ष भी फलदार वृक्ष बने, वृक्ष भी वो छायादार वृक्ष बने, छाया भी मिले और फल भी मिले। ये मत सोचिए कि वो फल मुझे ही मिलना चाहिए, वो छाया मुझे ही मिलनी चाहिए, या मैं एक ऐसा पेड़ ऐसी जगह पर लगाऊं जहां मैं अपनी गाड़ी पार्क कर सकूं, तो गर्मी के दिन में मेरी गाड़ी छाया में खड़ी हो सके। दूसरों के लिए भी लगाइए, दूसरों की गाड़ियों को छाया मिल सके, आपके कॉलोनी में जो काम करने वाले मजदूर आते हैं, जो काम करने वाली जो मेड सर्वेंट आती हैं, उनको छाया मिल सके, उनकी बात छोड़िए, मोहल्लों में जो डॉग घूमते हैं उनको छाया मिल सके, चिड़ियों को घोंसला बनाने के लिए जगह मिल सके, उनके लिए तो वही प्लॉटिंग है ना, वही प्लॉट है उनका, अगर आप छायादार वृक्ष लगाएंगे तो डेफिनेटली उनमें डालें निकलेंगी, और उन डालों में जो पक्षी हैं वो अपना घोंसले बनाएंगे, और फिर उनकी चेचहाट आप सुनिए, जब आप सुबह उठेंगे तो पता लगेगा कि पक्षियों का झुंड एक साथ उड़ करके कहीं जा रहा है, और शाम को एक साथ उड़ करके लौट रहा है। उस दृश्य को देखिए, क्या उस दृश्य को देखने से आपको आनंद नहीं मिलेगा? बहुत आनंद मिलेगा। और फिर देखिए, एक बहुत ही सरल सी बात है, सोच के देखिए, जब आप कहीं जाते हैं तो आपको एक पेड़ दिखाई देता है, और देखने के बाद आपको अच्छा लगता है। अगर बहुत ज्यादा धूप है और आप साइकिल में जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, तो फिर आपको लगता है कि थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के नीचे सुस्ता लिया जाए। ये पेड़ आपने तो नहीं लगाया था, लेकिन सुस्ता आप रहे हैं, और हो सकता है कि जिसने लगाया था वो इसके नीचे कभी बैठा ही नहीं हो। तो उसने क्या सोचकर लगाया था, क्यों लगाया था, किसके लिए लगाया था, उस पर विचार कीजिए। देखिए, जो छोटी छोटी चीजें हैं ये छोटी चीजें नहीं हैं, ये तो हमने अपनी सीमाओं में उन्हें छोटा बना दिया है। ये सारी चीजें बहुत बड़ी हैं, बहुत ही विराट चीजें हैं। उन पर विचार कीजिए तो उनकी जो विराटता है वो आपके सामने आएगी कि अच्छा अच्छा ये ऐसा है, ये इतनी विराट है, ये इतनी विशाल है। हमारी अपनी दृष्टि और हमारी अपनी सोच ने इन्हें छोटा बना दिया है। तो जब आपका निष्कर्ष यह निकले कि नहीं, किसी दूसरे ने यह वृक्ष लगाया था जिसके नीचे मैं भी सुस्ता रहा हूं, मुझे सुकून मिल रहा है, तो सीधी सी बात है कि मुझे भी तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसके नीचे दूसरे सुस्ता सकें। और इस तरीके से ये जो सुस्ताने की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, जो सुकून है, वो जारी रह सके, लगातार जारी रह सके। दोस्तों, जब हम इस तरीके से विचार करते हैं तो केवल काम ही नहीं करने लगते हैं, बल्कि हमारे अंदर भी एक विराटता पैदा होने लगती है। हमारे अंदर की सीमाएं टूटती हैं और हम धीरे धीरे फैलने लगते हैं, और यही फैलना हमें विशाल बनाते हैं। तो दोस्तों, करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। जब जब आप उस वृक्ष को बढ़ता हुआ देखेंगे, आप अपने अंदर को फैलता हुआ महसूस करेंगे। अब मुझे अनुमति दें। नमस्कार।